जो पूजा पाठ श्रद्धा पूर्वक सम्यक दर्शन पूर्वक करेगा तब तो फिर मजा ही है उसका, तो सम्यक दृष्टि को तो देवायु के अलावा कोई आयु बंधेगी नहीं। अगर सच्ची श्रद्धा के साथ में पूजा पाठ, और जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है डोनेशन के लिए, डोनेशन के नाम पर फिर भी वो स्वाध्याय करता है, पूजा पाठ करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, तो कौन सी आयु, देवायु बंधेगी उसके पुण्य। और अगर कोई व्यक्ति, किसी को उतनी श्रद्धा नहीं है पर कम से कम त्याग करने की भावना है और अपना अपने पास जो है उसको दूसरे के उपकार के लिए त्याग करता है, तो उसे भोग भूमि की प्राप्ति होगी। दोनों ही पुण्य कमा रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर दोनों में अहंकार आ जावे तो फिर दोनों ही गए। हाँ, अगर दान देने वाला सोचे देखा मेरे दान से चलता है, मंदिर भी मेरे दान से बना, महाराज का हार भी मेरे दान से चलता, महाराज के शास्त्र भी मैंने कितना संपत्ति से छपवाए हैं, मेरी संपत्ति से छपे हैं शास्त्र, ऐसा मान ले, इसलिए तो इन चीज़ों की अपन किसी मूर्ति वाले से कहो किसकी कितनी कीमत है, डांट के भगा देगा, वो कहेगा न्योछावर बोलो न्योछावर, कीमत नहीं होती शास्त्र पर, कीमत नहीं डलती थी न्योछावर, तो न्योछावर क्यों है, इसलिए कि इन चीज़ों के मूल्य नहीं होते, ये चीज़ें तो अमूल्य हैं, इनको कोई खरीदने का अहंकार नहीं कर सकता, करेगा तो उसका कल्याण हो जाए इसलिए। और एक चीज़ और आचार्यों ने ये भी लिखा है कि कोई ऐसा सोच करके कि मैं भले ही बुरे तरीके से कमाऊं लेकिन खूब पैसा हो जाएगा तो मैं दान करूंगा, तो कहते इससे अच्छा है कि आप दान ही मत करो, पाप से कमाना और फिर दान देना यह तो श्रेष्ठ है नहीं, ये तो ऐसा ही है जैसे पहले खुद अपने हाथ से शरीर पर कीचड़ लगा लेना फिर बाद में धोना, ऐसा लिखा उसमें, ये उदाहरण दिया ज्यों का त्यों। इस दृष्टि से नहीं, अपनी दृष्टि हमेशा अपने पास अतिरिक्त है, अपने पास आ गया है बहुत तो सबके काम में आ जाए, ऐसी भावना से अगर करें तो अच्छा है। महाराज मैंने इसलिए तो हमने इनको सजेशन दिया था, हर जगह कहता हूँ लेकिन बहुत कम लोग मेरी बात को, पर यहाँ तो उन्होंने मान लिया था, वो कह रहे थे हम करेंगे ऐसा, जैसे कि दीप प्रज्वलन होता तो मैंने पूछा कि दीप प्रज्वलन चाहे जिससे करवा लेते क्या, बोले नहीं वो हम लोगों का थोड़ा फिक्स है। कैसा फिक्स है, कि थोड़े बहुत तो डोनेशन देगा वो। हमने कहा ठीक, आपका जो भी डोनेशन वो दीप प्रज्वलन करने वाला देता है वो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो कभी नहीं दे सकता, कभी उसको भी तो आमंत्रित कर लिया करे। बोले हाँ ये ठीक है, कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति को भी बुलाएंगे जो कभी दीप पैसे देकर के दीप प्रज्वलन कर ही नहीं सकता। हम लोगों ने इसका प्रयोग आगरा में किया था, जब किसी भगवान के गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक आता था तो दीप प्रज्वलन होता था, तो फिर उसी सभा में से मैंने बोल दिया था बैनाड़ जी को, तो वो देख लेते थे कि वो व्यक्ति हैं वो तो कभी दे ही नहीं सकते, 500 रुपये भी नहीं दे सकते, उनकी हालत ही ऐसी नहीं है देने लायक, तो आप आइएगा आप जलाएंगे दीप। इतना हर्ष होता था उनको कि अरे वाह हमको ऐसे बुला लिया, हम तो कभी दे नहीं सकते, हम नियम ले सकते हैं, हम कोई नियम दे दो आप, हमें दीप प्रज्वलन करवाया तो हम रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं, हम और कोई संयम का पालन करने के लिए हम पैसे नहीं दे सकते, तो भैया ये भी दान है, ऐसा नहीं समझना। उसने व्रत नियम वाले को भी कभी कभी या कि इस तरह का महत्व दे देना चाहिए, उससे क्या होता है फिर ये जो एक बन गया है ना पैटर्न कि कोई भी धार्मिक कार्य हो सब पैसे की दम पर होते हैं, ये नहीं होना चाहिए, धार्मिक कार्य तो भावनाओं की दम पर होते हैं भैया, पैसा तो सेकेंडरी है, वो तो आ ही जाता है, जिसकी भावना पवित्र हो गई वो कहेगा ले दो ही हाथ तुल चाहिए यही सयानो काम, अपने आप झोली नहीं फैलाना पड़ेगी ना मांगना पड़ेंगे, ऐसे होना चाहिए अपने स्वेच्छा से जो है और सहज भाव से दे देगा, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, करेंगे वो कह तो रहे थे यहाँ पर कि ऐसा भी करेंगे। मैंने ये अनुभव किया कि जो महानुभाव अत्यधिक धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं वे मन वचन काय से, इसमें जो लिखा है वो अच्छा नहीं लिखा, अनुभव तो वैसे सभी का ऐसा ही है जो लिखा है उन्होंने, पर काय को वैसा उच्चारण करें आप समझ गए होंगे कि उनका मन उतना साफ नहीं रहता, जो जितना ज़्यादा बार बार क्रियाएं दोहराते हैं बताने के लिए कि मैं धर्मात्मा हूँ, ऐसे लोगों के जीवन में झांक के देखते हैं तो जीवन तो सूना पड़ा हुआ है और बाहर आडंबर बहुत है, इसी वजह से तो अपन को प्रॉपर मैसेज नहीं मिलता, धार्मिक व्यक्ति से जो मैसेज मिलना चाहिए उसके जीवन से, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत बाहरी है, बहुत सुपरफिशियल, बहुत सतही आचरण करता है वो, उसके जीवन में उसकी झलक। हमने तो दो प्रतिमा धारण करने वाले को गंदे गंदे अपशब्द बोलते सुना, बाहर रोड पर खड़े होते, दूसरे को जरा सी उसका पानी नाली में से उधर से उचट गया तो इतनी अपशब्द मुँह से, और दो प्रतिमा कैसा लगता उस समय देख करके कि अरे क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज मिलेगा इनसे। इसलिए त्यागी वृत्ति को तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है, उसकी सारा आचरण दूसरे को बहुत मैसेज देता है। पंडित जी थे सातवीं प्रतिमा वाले और अस्वस्थ हो गए, देव दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो उनसे कहा कि भोजन तो कर लो। भोजन नहीं करूँगा, दूध पानी दे दो। अरे आप महाराज भी तो कभी कभी जब दर्शन नहीं मिलते हैं तो आहार कर लेते। अरे वो तो महाराज हैं, मैं तो गृहस्थ हूँ। अरे तो अभी आप तो सात प्रतिमाधारी हैं। नहीं नहीं, अगर मैं सात प्रतिमाधारी होकर बिना मंदिर के भोजन कर लूँगा तो परंपरा बन जाएगी कि देखो इतने बड़े सात प्रतिमाधारी पंडित जी भी तो बिना दर्शन के भोजन कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। बताओ कितनी उनको इस बात की सावधानी थी। ऐसे ही त्यागी व्रती को भी जो धर्म करता उसको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, उसके जीवन से ऐसा मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए जैसा उनने लिखा। सही लिखा हुआ है कि उतनी पवित्रता नहीं लगती, उनके व्यवहार से भी लोग अत्यंत अहंकारी प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से भी किसी ने ये प्रश्न किया था, उस समय आचार्य श्री सुनाते हैं। तो आचार्य महाराज ने तो पहले दोनों को समझाया, जो त्यागी व्रति बैठे थे उनसे भी कहा कि देखो अपने आचरण को अच्छा बनाना, और फिर जो जिसने कहा था उससे मालूम क्या जवाब दिया, उसको भी जवाब दिया। वो उनका जवाब कि देखो भले ही वो गुस्सा करते हैं त्यागी व्रति होकर के भी, लेकिन तुम्हारे गुस्से असयमी के गुस्से से तो ज़्यादा अच्छा गुस्सा है। कैसा, महाराज उदाहरण दो। बोले अगर एक असयमी है जो कि कोई त्याग व्याग नहीं करता, कोई धर्म नहीं करता, उसका घर में झगड़ा हो जाए तो नाराज होकर के बाहर चला जाएगा और होटल में खा लेगा, लेकिन त्यागी व्रति हो और नाराज हो जाए उस दिन उपवास कर लेगा लेकिन होटल में नहीं खाएगा, वो इतनी कषाय नहीं उसकी। ये थोड़ा फर्क, ऐसा फर्क भी बता दिया उन्होंने कि देखो कितने भी हो लेकिन उसको थोड़ा विवेक तो होता, ऐसा नहीं कि उसकी निंदा करो आप, लेकिन कमजोरी तो है कि अगर कोई त्यागी व्रति इस तरह का आचरण करे जिससे दूसरे को देखने में लगे कि अरे इनको अहंकार बहुत है या कि बहुत कषाय करते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा कर लेते हैं इस तरह का, वो अब क्या है ना असल में कि एक तो इस पंचम काल में और त्याग करना बहुत कठिन, और फिर उसमें कोई अगर छेड़े तो और ज़्यादा। अब जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि दादी ने 16 कपड़ा पहने और अपन ने चिढ़ाया, छीलें क्या, तो देखो अब तुम छीओगे तो हम मार पड़ेगी तुमको, तो थोड़ी देर तो ऐसा कहेंगे, और अगर अपन ने छू लिया तो उनको गुस्सा आ जाती थी, देखो अब तुमने कब, पहले तो समझाती थी देखो अब तुमने छू लो, अब हम फिर से धोती सुखाएं, फिर से वो ठीक करें, फिर सू ला के फिर हम बनाते हैं, फिर कब खेहें 12 बजे, तुमने तो छू लो। उनकी समस्या भी देखो, उनको अगर क्रोध आ गया है तो उसका कारण क्या है कि अब उनको इतना सारा कुछ फिर से करना पड़ेगा। ये बात ठीक है कि उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका भी फर्ज है कि उनके धर्म ध्यान में सहयोगी बने। ये तो दोनों के बीच एक अच्छा अगर अंडरस्टैंडिंग हो और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो, तब तो ये बात बहुत अच्छी बनती। नहीं तो देखने में यही आता है कि त्यागी व्रती होने के बाद और अहंकारी हो जाते हैं, महाराज उन लोगों को आहार देने से मना कर दें जो शराब आदि का सेवन, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ लेकिन इसके बाद भी, और अगर कोई ऐसा करे तो कितना बड़ा दोष है कहना चाहिए। सप्त व्यसन का त्याग हो भैया तभी हाथ पर आहार का ग्रास रखना। और मुझे विश्वास है कई बार तो लोग जो है दूसरे से चिढ़ते हैं इस वजह से भी, ऐसी शिकायत कर देते हैं कई बार, ऐसा हो या फिर हो सकता है कि वो कल तक करता हो हैं और आज उसने आहार देते समय मन में संकल्प कर लिया हो कि अब नहीं करूंगा, तो भैया उसको भी दोषी नहीं माना जाएगा। कल तक जो व्यसनी था आज उसने त्याग कर दिया तो वो तो पीठ थपथपाने के योग्य है। पर फिर भी मैं दोनों के लिए कहूंगा, अपन किसी के बारे में झूठी शिकायत भी ना करें, और मान लो कोई व्यक्ति इस तरह की क्रिया करके आहार देता है तो वह भी दोषी है, उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों के लिए ये मैसेज है, उससे धर्म में दोष तो लगता है, लगता ही है, हम खुरई में थे, सन 85 की बात है, अब हमें नहीं मालूम था। सुबह सुबह से वो आने लगे एक व्यक्ति, पर वो सबको मालूम था कि ये शराब पीते हैं, देखना, और वो हमारा कमंडल लेके चलने लगे। हमने कुछ नहीं कहा, ठीक। तो मालूम किसी ने कहा कि देख लो जिनका कमंडल शराबी उठा रहा है उनका क्या आचरण होगा, ऐसा कह दिया। तो लोगों को फिर बहुत दुख लगा कि सही बात है, हमारी वजह से इस पूरे मोक्ष मार्ग पर दूषण आ गया कि शराबी जिसका कमंडल उठा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका आचरण कैसा होगा। इसलिए भैया बड़ी सावधानी का काम कि अपन को स्वयं उस प्रक्रिया में, या तो उस प्रक्रिया में शामिल होना है तो अपनी योग्यता बढ़ा लो। ठीक है, कल तक पीते थे, हम आज छोड़ देते हैं, तो हम अधिकारी हो गए अब कमंडल उठाने के। और चार लोगों से कह दो कि भैया आप सबको मालूम होगा कि मैं कल तक शराब पीता था, लेकिन मैंने महाराज की प्रेरणा से और अब शराब छोड़ दी है, मेरे बारे में आप अपना चित्त निर्मल रखना। क्या हुआ, शाहपुर की घटना, वो व्यक्ति ठेला चलाते थे। अब ठेला चलाने वाले को तो अधिकांश लोगों को ड्रिंक करना ही पड़ती है, इतना हैवी लोड होता उनके, वो भी करते थे शाहपुर में। अब उनने चौका लगाया उनके घर में, हमें मालूम नहीं था, हम चले गए, उनने आहार दिया, सब कुछ हो गया। हम जैसे ही आहार से वापस आए, लोगों ने कहा कि हम लोग डर के मारे आपसे नहीं कह पाए, पर वो व्यक्ति तो शराब का सेवन करते हैं, ऐसा हम लोगों को मालूम है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर उन्होंने दे दिया है तो मैं प्रायश्चित कर लूँगा, मेरे लिए तो और क्या प्रक्रिया है, उनको थोड़ी डांटूंगा मैं, मेरे को मालूम पड़ गया तो मैं प्रायश्चित कर लूँगा, कल मेरे से जितनी होगी रस परित्याग कर दूंगा, उपास बन सकेगा तो उपास कर लूँगा, ऐसा मैंने लोगों से कहा। अब वो तो आहार दे के प्रसन्न मन से और अपने काम पर चले गए। रात 11:30-12 बजे लौटे, घर के बच्चे जाग रहे थे, उन्होंने कहा कि आज तो पिताजी आपने आहार दिया और महाराज तक खबर पहुँच गई कि आप शराब इत्यादि पीते हैं, क्या आप पीते हैं सचमुच? हाँ बेटे, मैं पीता था, लेकिन 1.5 साल हो गया मैंने तो छोड़ दी, मैंने माताजी के पास छोड़ी सागर जा करके। अरे तो बाकी लोगों ने तो यही कह दिया और महाराज ने कहा है कि मैं तो कल प्रायश्चित कर लूँगा, कोई बात नहीं। 12 बजे से सो नहीं पाया, 3:30 बजे आकर के मंदिर के बाहर चबूतरे पर टिका बैठा रहा। सुबह सबसे पहले दरवाजे खुले, महाराज आप प्रायश्चित मत करना, मैं सब समाज के सामने हाथ जोड़ के कह सकता हूँ कि मैं शराब पीता था, आपने ठीक कहा, कोई गलत नहीं कहा, लेकिन मैंने 1.5 साल से छोड़ दी है और मैं आप सब जनों के सामने महाराज के सामने फिर से आजीवन सौगंध लेता हूँ। बताइए, उसका जीवन इस तरह उसने सुधार लिया। तो भैया दूसरे को अगर सुधरने का प्रयास कर रहा है तब भी अपन को नहीं करना चाहिए। और कोई व्यक्ति जानबूझ के तंग करने के लिए, कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि अच्छा इनका ऐसा चलता है, बिना पूछे चाहे जिससे हार लेते हैं, देखते हैं अपन ऐसे ही बेईमानी करेंगे इनके साथ, सब इनका मिटा के रख देंगे, ऐसे भी रहते झरे पूछे में सब अच्छो काय चल रहा हो। बुंदेलखंड में कहते हैं कि सब अच्छो काय कछु नहीं हो रहा, मतलब कछु नहीं हो रहा मतलब कछु उपद्रव भाव चाहिए, कुछ नहीं सब आराम से चल रहा है यार, बड़े आराम से चल रहा, महीने भर हो गया बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं कुछ तो होना चाहिए इतने बड़े जयपुर में है, ऐसा भी तो कुछ ना कुछ। आप जिस चाय से हार लेते थे आपके हारों में तो शराबी भी हार दे लेता, अब बताओ हो सकता एकाध व्यक्ति ने ऐसा करा हो, कर सकता है इतना फ्रॉड? कर किसके साथ करोगे छल, अपने ही साथ किया, मेरे साथ नहीं, मुझे तो शाम को प्रतिक्रमण किया और आचार्यों ने लिखा हुआ है कि भूल चूक मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बुलवाने के बाद भी किसी ने कोई दोष लगाया हो 46 दोषों में से, उस दोष के लिए प्रतिक्रमण मात्र से वो शुद्ध हो जाता है। मालूम पड़ जाने पर गुरु से अतिरिक्त प्रायश्चित लिया जाता है, मालूम नहीं होने पर मात्र प्रतिक्रमण और आलोचना से उस दोष से मुक्त। लेकिन इसके मायने आप अर्थ गलत मत ले लेना, हाँ अर्थ आप बिल्कुल सी ठीक लेना, इसके मायने अपन को जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि किसी से अज्ञानता में हो गया हो तो उसे सुधार लेना चाहिए और दूसरे के बारे में बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आंखों देखी कानों सुनी बात पर भी विश्वास नहीं करना। ये आंखें पूरा नहीं देख पाती हैं, ना कान सही सुन पाते हैं, इसलिए किसी के बारे में भी कुछ कहने से पहले या तो फिर उस व्यक्ति का ऐसा ना लिख करके बहुत साहस करके और पूरा नाम ही लिख देना चाहिए कि महाराज आज आप इतना साहस नहीं, अपन लोगों के अंदर होना चाहिए। अगर आप वाकई में सुधारना चाह रहे हैं तो फिर या तो इतना साहस करो कि लिख दो महाराज जी वो जो वहाँ पर उस गली में आप चौके में गए थे वहाँ उनके यहाँ पर परिवार में वो शराब पीते हैं, आप कन्फर्म कर लेना, हम उसके जवाबदार हैं। या तो इतनी हिम्मत करो, नाम लिखो इसमें। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन शिकायत करने की हिम्मत तो है। देखो दूसरे तो इससे बचने, ये तो ऐसे तो हर बार इतने बार इस तरह की चीजें आती। जब भी मैंने देखा कि जब बिल्कुल साइलेंटली सब चल रहा होगा तब ऐसी जरूर आएगी। एक और आई मेरे पास बाई पोस्ट, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, बाई पोस्ट भेजा उन्होंने। हाँ उसके बारे में कभी फिर बाद में चर्चा करूंगा, है लेकिन मजेदार। पहले मैं अपने मन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर रहा हूँ क्योंकि जवाब मुझे पॉजिटिव ही देना है, इसलिए वैसे हो गया व्यवस्थित। कल देता तो थोड़ा तेज जवाब देता लेकिन आज तो सेटल हो गया मेरा मन। मैं मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि अच्छा ये बात है, इसलिए मुझे ऐसा टाइप करके ताकि राइटिंग ना मालूम पड़ जाए। हाँ टाइप करके बाई पोस्ट और दूसरे हाथ के हाथ से पता लिखवा करके। अरे वाह इतनी हिम्मत थी तो आकर के सामने डिस्कशन कर लेते ना। लेकिन नहीं, असल में बात यह है कि व्यक्ति ना स्वयं धर्म करना चाहता है, हो सकता है कि दूसरे के आहार की प्रक्रिया की शिकायत करने वाले ने कभी 16 के कपड़े पहन के किसी को आहार तक नहीं दिया होगा, लेकिन आहार में मीन मेष निकालने के लिए तो खड़ा ही हुआ है, उसने खुद कभी नहीं दिया होगा। एक व्यक्ति थे मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष थे, स्थान नहीं बताऊंगा, 3.5 महीने तक मेरे चतुर्मास के दौरान, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी, लेकिन उनकी भावना देखना उनके मंदिर अंदर, फिर उन्होंने सौरव फील किया। वो सबसे कहते थे वहां क्या रखा हुआ, वहां काहे को जा रहे हैं, अरे चला हुआ भोजन कर लेते हैं, कोई यहां से वहां आहार ले जाता है लेके भागते हैं, यहां से वहां क्या भागते हैं और उनका आहार कर लेते हैं, ऐसा कोई होता है, ऐसे करके मैंने जितनी निंदा हो सकती उतनी करते, लोगों को कहते चलो वहाँ चलो, वहाँ कहाँ जा रहे प्रवचन में, ऐसे लोगों को लौटा लेते थे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या उनको कह दिया या कह लो काल लब्धि आ गई, और मैं छत पर ऊपर बैठा था और वो आ गए, महाराज दो प्रश्न आपसे पूछना है, मैं प्रश्न नहीं बताऊँगा, दोनों प्रश्न पूछे और मैंने एक एक लाइन में जवाब दे दिए। फौरन उन्होंने हाथ जोड़े, कल से चौका लगेगा। बस उनके साथ में एक और थे, वो कहने लगे आपका लगेगा मैं शामिल होऊंगा। और दूसरे दिन आप आश्चर्य करेंगे, वही व्यक्ति जो कल तक कहते थे वो चौके में ऐसे कांपते कांपते खड़े हुए हैं, और मैं पहले ही दिन उनके यहां पहुंच गया और उनने आहार दिया। और दूसरे दिन से धोती पहनते नहीं बनती थी, ऐसे पकड़े धोती और एक हाथ में ले अंगूर, महाराज कहाँ गए महाराज कहाँ गए, महाराज उनके गए, हमें दुआ चलो, हमें 65 साल के थे, 1.5 साल जीवित रहे फिर उसके बाद, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जबकि उन्होंने, वो स्वयं कहते थे कि मैंने कभी भी किसी भी मुनि महाराज को मुनि महाराज माने ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी 65 साल की निकल गई, अब मुझे लगता है कि मेरी भूल थी, आज जितना हो सकता है उतना करने वाले मुनि महाराज हैं, आगम सच्चा है पंचम काल के अंत तक रहेंगे। आप बताइए, ये उदाहरण जब मैं विचार करता हूं तो लगता है कि ठीक है, जिसकी जिस तरह की कब परिवर्तन होगा कह नहीं सकते हैं, कोई भी चीज अपन को कहने से पहले बहुत विचार करना चाहिए। हमने कई लोगों को देखा पूजा पर इतनी बारीकी से प्रश्न पूछेंगे, हो सकता है कि एक ने अभिषेक करो हुई ने पूजा करी, और थोना में चढ़ाना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, खड़े होकर करना चाहिए कि बैठ करके चन करना चाहिए, यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रात में करना चाहिए कि दिन में करना, दुनिया भर की बात, और कब एकदम ने करी हुई है कब पूजा, और पूछेंगे सब, ये कई लोगों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति रहती, जिनने लिखा होगा शायद उनने कहा आ रही नहीं दिया हो एक आध बार भी। हाँ, बहुत सारे प्रश्न भैया। अब जो है इन प्रश्नों को, क्योंकि 6:05 हो गए, अपन को इस चर्चा से क्या सीखना भैया, कि कभी भी धर्म के क्षेत्र में धोखा नहीं करना, और अगर कोई धोखा कर रहा है तब अपन एकदम उसके बारे में कुछ भी नहीं कहें, बल्कि इंतज़ार करें कि शायद हो सकता है कि वो बदल रहा हो, क्योंकि आज के समय में 1% लोग हैं जो कि वास्तव में धर्म ध्यान करने की रुचि रखते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन्हीं को अपन दोषी बना देंगे तो कल के दिन और सब धीरे धीरे करके दूर ही हटते जाएंगे, कोई नहीं होगा फिर धर्म करने वाला। अपने हाथ से हम धर्मात्मा की निंदा करके क्या करेंगे, अपने धर्म की ही निंदा करेंगे। इसलिए बहुत सावधानी से उसको ऊपर उठाने के लिए, अगर दोष देखना भी है तो उसको ऊंचा उठाने के लिए, कि उसमें से ये दोष निकल जावे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दीन दुखी पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं।
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं।
बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं।
बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं।
औरों का उपकार करूं,
औरों का उपकार करूं।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।